आज का प्रातः क्लास है 26 जनवरी 1968। रिटायर चला है, ये कौन आया आज सवेरे सवेरे? रूहानी बाप बैठ कर रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप माना कौन? और जिस्मानी बाप माना कौन? रूहानी बाप माने रूहों का बाप, और जिस्मानी बाप माने जितने भी जिस्मधारी मनुष्य मात्र हैं सब का बाप। तो समझाने वाला कौन है? रूहानी बाप। जिस्मानी बाप समझाने वाला नहीं है। जिस्मानी बाप और रूहानी बाप में बहुत फर्क है, फिर भी रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। बैठकर समझाते हैं माना कोई में प्रवेश होकर के समझाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जब आता हूँ तो किसको भी पता नहीं पड़ता है। किसको पता नहीं पड़ता है? जिसमें आता हूँ उसको भी पता नहीं पड़ता, जिसमें बैठकर समझाता हूँ उसको भी नहीं पता पड़ता। ब्रह्मा को पता पड़ता है, ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि गुप्त है। तुम बच्चे भी गुप्त हो, अगर रूहानी स्टेज में हो तो। गर्भ में भी जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़ा ही पड़ता है। कब प्रवेश किया, तिथि तारीख कोई बता ही नहीं सकता। माँ को भी पता नहीं पड़ता कि आत्मा ने कब प्रवेश किया। जब गर्भ से बाहर निकलते हैं तो तिथि तारीख निकालते हैं। बाहर आना माना प्रत्यक्ष होना। ऐसे ही ये रूहानी बाप है, जब प्रवेश किया तो कोई को पता नहीं पड़ता। जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो कोई को पता नहीं पड़ता, पर जब बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष होती है तो पता चलता है। ऐसे ही संसार में वो रूहानी बाप तब प्रत्यक्ष होता है जब संसार में सबके सामने प्रत्यक्ष होता है, नहीं तो गुप्त पाठ बजाता रहता है। प्रवेश कब किया, कब रथ में पधारा, ये कोई को नहीं मालूम पड़ता है। हाँ, कोई को देखते थे तो नशे में आ जाते थे। समझा, कुछ प्रवेशता है, या तो मेरे में कोई ताकत आ गई है, ताकत भी कहां से आई? मैंने खास कोई जप तप आदि थोड़े ही किया। इसको कहा जाता है गुप्त, तिथि तारीख कुछ भी नहीं, और सभी मनुष्य मात्र की तिथि तारीख होती है। शंकर तो आता ही नहीं है, फिर क्या हुआ? सूक्ष्म वतन में सदैव ही है, कब से है? सूक्ष्म बतन की स्थापना कब होती है ये भी कह नहीं सकते। मुख्य बात तो है मनमना भव। बाप कहते हैं ये आत्माओं तुम मुझे अपने बाप को बुलाते हो कि आकर के पतित को पावन बनाओ। बिना आए पतितों को पावन कैसे बनूंगा? पतित दुनिया को पावन बनाता हूं। बाप समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार जब मैं आता हूं अर्थात प्रत्यक्ष होता हूं तो चेंज जरूर होती है। सत्युग से लेकर जो कुछ पास्ट हुआ वो फिर रिपीट करेंगे। सत्युग त्रेता फिर जरूर रिपीट करेंगे। सेकंड सेकंड पास होता जाता है और संबति भी पास होता जाता है। कहते भी हैं सत्य को पास्ट हुआ देखा नहीं। बाप ने समझाया है तुमने वो सब पास किया। तुम ही पहले पहले हमसे बिछुड़े हो। यह पहले पहले नहीं बिछुड़ा कौन? ये ब्रह्मा अथवा इनको फॉलो करने वाली जो भी आत्माएं हैं वो पहले पहले नहीं बिछोड़ती हैं। तुम मेरे से पहले पहले बिछोड़े हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हो बिछोड़ने वाले भी नंबर वार हैं। तो इस बात पर गौर करना होता है। ये तुम की लिस्ट में कौन कौन है? जो कल पहले भी पहले पहले बिछुड़े थे अभी भी रूहानी बाप से पहले पहले बिछुड़ोगे कौन है और कितने इस लिस्ट में होंगे? रूहानी बाप से पहले पहले बिछुड़ने की लिस्ट में कौन कौन होंगे और कितने होंगे? हाँ बच्चे कितने होंगे?
सूर्यवंशी सूर्यवंशी
हाँ सूर्यवंशी तुम पहले पहले हमसे बिछुड़े हो। तो इस बात पर गौर करना होता है कैसे हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म तो कृष्ण की आत्मा भी लेती है। फर्स्ट क्लास सत्युग की रचना है लेकिन वो कैसे 84 जन्म लेती है और तुम कैसे 84 जन्म लेते हो? तो फिर हूबहू लेने पड़ेंगे अर्थात सुख और दुख का पार्ट बजाना होगा। ये सुख और दुख का खेल कोई बड़ी बात नहीं है। सत्युग में होता है सुख कलयुग में होता है दुख। नई दुनिया में बहुत सुख होता है जैसे नया मकान में सुख होता है पुरानी दुनिया में दुख। मकान पुराना होता है तो कहां से छत बहेगी कहां से कुछ होगा पुराना हो जाता है। उस बात को समझने की हिम्मत करनी है। बहुत पुराना होता है तो समझा जाता है अब ये मकान रहने लायक नहीं है परंतु नई दुनिया को तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया रहने लायक नहीं है। अभी तुम लाए तो नई दुनिया अर्थात नई दुनिया में चलते हो, हर चीज पहले नई होती है फिर पुरानी होती है। नई होती है तो सुखदाई होती है, पुरानी होती तो दुखदाई हो जाती है। अभी ये तुम बच्चों के ख्याल में आया है और कोई तो इन बातों को समझ नहीं सकता, कोई के ख्याल में नहीं आता। गीता भागवत रामायण आदि सुनाते ही रहते हैं, जो सीखते रहते हैं उसमें बिजी रहते हैं। तुम और हम भी बिजी थे ना अपने अपने धंधों में। किसने कहा, किससे कहा, किस समय के लिए कहा? तुम और हम अपने अपने धंधे में बिजी थे ना?
हैं? ब्रह्मा बाबा ने कहा।
ब्रह्मा बाबा ने किससे कहा?
प्रजापिता से।
प्रजापिता वाली वो सोल को ब्रह्मा बाबा इमर्ज करना जानते थे क्या? तुम और हम भी बिजी थे ना अपने अपने धंधों में। अभी समझते हैं बेहद के बाप ने हम बच्चों को कितना समझाया है। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी नई दुनिया में चलना है। और ऐसे भी नहीं है कि नई दुनिया में सभी चलेंगे, सब नहीं चलेंगे, सभी मुक्ति धाम में जाए बैठे हैं फिर तो प्रलय हो जावे। ये कायदा नहीं है क्या?
सभी नहीं
जाएंगे
कहाँ? नई दुनिया में सभी जाएंगे?
नई दुनिया में भी सभी नहीं जाएंगे और मुक्ति धाम में भी जाकर सभी नहीं बैठेंगे। अगर सभी वहाँ जाके इकट्ठे बैठ जाएं तो ये दुनिया प्रकृष्ठ रूप से लीन हो जाए, कुछ भी न रहे। ये कायदा नहीं है। तो बच्चों की बुद्धि में सारा चक्र है, तुम जानते हो। ये पुरानी दुनिया और नई दुनिया का कल्याणकारी ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी चेंज होनी है, बाकी सभी शांति धाम चले जाएंगे। वहां शांति धाम में तो सुख दुख की भाषणा ही नहीं होती है। और अभी का ये भी गायन है कि यज्ञ में विघ्न पड़े, सो तो ये विघ्न पड़ते ही रहते हैं। कल्प के बाद भी ये विघ्न पड़ेंगे, कल्प कल्प तुम इन विघ्नों के आदि हो गए हो। तुम तो पक्के हो गए हो इस बात में। जो विघ्न बाधाएं आती है उनका मुकाबला करने में पक्के हो गए हो। स्थापना फिर विनाश, ये कोई छोटा काम थोड़ा ही है। अच्छा, पालना का काम छोटा है? पालना करने में तकलीफ होगी या स्थापना और विनाश होने में तकलीफ होती है? स्थापना में भी तकलीफ होती है और इतनी बड़ी पुरानी दुनिया का विनाश हुआ होगा, हाहाकार होगा, उसमें भी तकलीफ होगी। विघ्न किस बात में पड़ते हैं? बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उस परबलाओं पर अत्याचार होते हैं, द्रौपदी की बात आई है ना, ये ब्रह्मचर्य पर ही खिटपिट होती है। और गालियां भी गीता सुनाने वालों को ही दी है, बाकी शास्त्रों में तो सभी मनुष्यों की बनाई हुई बातें हैं। वो सभी शास्त्र भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, वो पढ़ते ही आते हैं। तुम अभी समझते हो वो सब झूठ हैं, और झूठ के कारण पाप बढ़ते ही जाते हैं। सतोप्रधान से तमोप्रधान बनना जरूर है, ये भी तुम ही समझते हो। सीढ़ी उतरनी होती है, पुरानी दुनिया बन जाती है। ये सभी बातें तुम बच्चे समझते हो तो उन बातों का स्मरण भी करना चाहिए। स्मरण करके फिर दूसरों को समझाना भी चाहिए। पढ़कर के टीचर बनते हैं ना, जरूर टीचर की बुद्धि में नॉलेज है, तब ही पास होकर के टीचर बने। टीचर से जो सीख करके होशियार होते हैं तो गवर्नमेंट उनको पास करती है, ट्रेनिंग देती है, फिर देखते हैं ये टीचर सिखलाने लायक है, तुम भी टीचर बनते हो। और बाप ने तुमको टीचर बनाया है, एक टीचर क्या करेगा, तुम सभी हो रूहानी टीचर्स। 26 जनवरी 68 वाणी का दूसरा पेज। तो बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। समाचार बच्चों ने सुना, जयपुर में स्पीकर आया तो नॉलेज परमोहित हो गया। ज्ञान तो बिल्कुल ही एक्यूरेट है, मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान है ना। तो टीचर का मान रहा, आगे चलकर देखना क्या होता है। माया भी उनके पिछाड़ ही पड़ेगी, मुझे ये पता नहीं क्या है, शास्त्र राइट है या ये बच्चियां राइट है। अभी बच्चों को राइट समझते हैं तो माथा झुकाते हैं, कोई लाइट भी देखते हैं। जितना तुम बाप को याद करते रहेंगे तो लाइट आती रहेगी। मनुष्यों को साक्षात्कार होता रहेगा, क्योंकि आत्मा प्योर बनेगी याद से। आत्मा प्योर बनेगी तो कोई को भी साक्षात्कार हो सकता है, क्योंकि बाप भी तो मददगार बैठा है ना। मददगार बाप भी प्रवेश करेगा। बाप तो हमेशा बच्चों के मददगार ही होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते ही हैं, नाम नहीं लिया जाता है। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि से समझना चाहिए कितना हमको धारणा होती है। अगर धारणा होती है तो जिनको धारणा होगी वो दूसरों को ज्ञान भी समझाए कर दिखावेंगे। ये ज्ञान धन है, इनको ज्ञान रतन कहा जाता है। अगर कोई को देते नहीं है तो कहेंगे मनहूस है। मनहूस भी होते हैं ना, तो दूसरों का भी कल्याण करना है। धन ले करके फिर दान करेंगे तो महादानी कहेंगे। महादानी कहो, महावीर कहो, महारथी कहो, बात एक ही है, परंतु सभी तो एक जैसे नहीं बन सकते। तुम्हारे पास कितने आते हैं, एक एक से बैठ करके माथा मारना होता है। वो लोग तो अखबारों द्वारा बहुतों को बातें सुनाते रहते हैं तो चमकते हैं, पर जब तुम्हारे पास आए सुनते हैं तो कहते हैं परमत क्या क्या सुना, यहां तो हमने बहुत फर्क देखा। एक एक को माथा को ठीक करने में कितनी मेहनत लगती है। कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार हैं, प्यादे हैं, ये भी ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। ये भी तो समझते हैं आखिरी में जीत तो हमारी होनी है। जो अंदाज कल पहले बना था वो जरूर बनना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को करना ही पड़ता है, बाप राय भी देते रहते हैं। कोई को समझाने की कोशिश करो, ऐसे भी नहीं है कि भांजी वाले के पास जाते रहो। पहले तो शिव बाबा के मंदिरों में जाए सर्विस करो। तुम पूछ सकते हो शिव बाबा के मंदिर में जाकर पूछो ये कौन है, इस पर तुम क्यों पानी चढ़ाते हो, तुम बच्चे तो अच्छी रीति जानते हो। कहते हो ना गया टांडे पर मालिक हो बैठा, ये तुम्हारा दृष्टांत है। तुम जाते हो जगाने के लिए, शिव के मंदिर में तो ढेर जाते हैं ना। काशी में विद्युत मंडली भी है, वहां से भी समाचार आया है म्यूजियम के ओपनिंग में विद्युत मंडली वालों को बुलाते हैं। तो लिखा है हमको जगदीश मदद लेने के लिए चाहिए, जानते हैं जगदीश तीखा है, संजय नाम दिया है ना, संजय माना सम माने संपूर्ण, जीत माना जीत, जिसकी संपूर्ण जीत होनी है उसका नाम संजय। तो बाबा ने हद में बोला या बेहद में बोला है, हद में क्यों नहीं, बेसिक नॉलेज के बतौर जिसका नाम संजय दिया वो जगदीश की संपूर्ण जीत नहीं हुई क्या है, क्यों बेसिक नॉलेज में जो भी बेसिक के भाती हैं पढ़ाई पढ़ने वाले, उनके दिल पर जीत नहीं पहनी, जीत पहनी या नहीं पहनी है? जीत तो पहनी, परंतु वो हद की पढ़ाई है। क्या जो भी ईश्वरीय नॉलेज की बेसिक पढ़ाई है वो हद की क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ सुनना सुनाना हुआ, लेकिन गहराई से समझना और समझाना नहीं हुआ। अगर जगदीश भाई ने रूबरू आकर के उस बात को गहराई से समझा होता तो फिर शरीर छोड़ने के बाद ये बात नहीं आती कि हमने जो करना था सो नहीं कर पाया। क्या करने का उमंग उत्साह था? कि बाप की प्रत्यक्षता मुझे जरूर करनी है, परंतु बाप को पहचाने नहीं तो फिर प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? मुगालते में रह गए। शरीर छोड़ने के बाद जब आत्मा सूक्ष्म स्टेज धारण करती है तो सच्चाई का पता चलता है। कि हम तो झूठे अहंकार में रह गए, तो वो तो बेसिक नॉलेज के बतौर संजय नाम पड़ा। फिर बेहद में संजय कौन? बेहद में तो संजय वो ही कहा जाए जो लक्ष्य को पूरा प्राप्त करे। नर से डायरेक्ट नारायण बने और दूसरों को बनाए। जो नारायण बनेंगे और बनाएंगे, ऊंच पद पावेंगे और दूसरों को ऊंच पद पाने लायक बनावेंगे, वो बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। या जो इस जन्म में नरसे नारायण बनेंगे ही नहीं, अगले जन्मों में बनेंगे, जिन नारायणों का शास्त्रों में कोई गायन ही नहीं है, मंदिरों में पूजा ही नहीं है, वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाप के डायरेक्ट बच्चे होंगे या कोई दूसरे होंगे? आज के बड़े बड़े माने जाने वाले जो भी दुनियावी लोग हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे क्या? वो थोड़ी प्रत्यक्ष करेंगे। तो बोला, जानते हैं जगदीश तीखा है, ये संजय है ना, बुलाते हैं उनको, खुशी होनी चाहिए। जिसको सेवा के लिए बहुत लोग बुलाने की आशा रखते हैं तो दिल में क्या होना चाहिए? कि दिल में आना चाहिए कि मैं लड़ाई पर जाता हूं। क्या? कौन सी लड़ाई है? कोई बुलाते हैं तो कुछ न कुछ प्रश्न पैदा होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए जाता हूं, समाधान करने जाता हूं। ऐसा कोई निमंत्रण आए तो बहुत खुश होना चाहिए। और सारा काम छोड़ करके पहले वहां जाना चाहिए। काशी में बड़े बड़े पंडित विद्युत मंडली के हैं जो टाइटल देते हैं। कोई ऐसे भी हैं जो अपने ऊपर टाइटल लगाते होंगे। भक्ति मार्ग में तो कोई कितनी भी होशियारी दिखावे, परंतु उस होशियारी में रखा कुछ भी नहीं है। कितनी मेहनत करते हैं, कितने ढेर मंदिर हैं, ये भी एक धंधा समझ लिया है। क्या मंदिर बनाना और उनमें शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा आदि कराना, कोई अच्छी स्त्री देखे, उनको गीता पढ़ना सिखा करके उनको आगे कर देते हैं। फिर जो कमाई होती है वो कमाई उनको मिलती रहती है। ये भी धंधा है, बाकी इन धंधों में रखा कुछ भी नहीं है। उस तरफ इशारा किया है,
बेसिक की
दुनिया, ब्राह्मणों की बेसिक की दुनिया में बाप को समझते ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े मंदिर बनाते रहते हैं। मंदिर बनाए, उनमें कोई अच्छी स्त्री कन्या देखी और उसको बैठाई दिया, धंधा चलता रहता है, पैसे कमाते रहते। बाप का परिचय तो कोई को मिलता ही नहीं है। ऐसे रिद्धि सिद्धि बहुत सीखते हैं। तो निमंत्रण आया है जगदीश को, वो भी जानते हैं बाबा की बनारस में आंख है क्या? कौन से बाबा की कहां आंख है? हद का बाबा कौन, फिर बेहद का बाबा कौन? हद का बनारस कौन सा, फिर बेहद का बनारस कौन सा? हद के बाबा की हद के बनारस में आग लग गई तो वहां इंचार्ज बना करके फट से गुप्ता जी को भेज दिया। किसको भेजा?
गुप्ता
जी को। यहाँ मुरली में गुप्त से गुप्त पार्ट बजाने वाला कौन बताया? बाप है बहुत गुप्त। जैसे बच्चा होता है गर्भ में आता है तो गुप्त रूप में पलता रहता है, फिर बाद में प्रत्यक्ष होता है तो पता चलता है। तो बताया कि बाबा की बनारस में आंख है, जाकर देखना चाहिए क्या होता है। बल देरी है परंतु जाना तो पड़े ना, वहां होशियार की दरकार है, वहां अगर फेल होंगे तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां कुछ भी नहीं जानती। इसलिए जाना भी चाहिए योद्धाओं को, वो भी योद्धाएं हैं ना। शंकराचार्य ने जाकर के शास्त्रार्थ किया था, परंतु अभी तुम बच्चों को तो शास्त्रार्थ नहीं करना है। क्या कोई शास्त्रों का अर्थ बैठ करके नहीं बताना है? फिर भक्ति मार्ग में ये रस्म कैसे पड़ गई शास्त्रार्थ करने की? वो होते हैं हद के शास्त्र और यहां है बेहद का शास्त्र, तुम्हारी सच्ची गीता। मुरली, उन्होंने नाम दिया है ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकली और तुमने नाम दिया है मुरली। तो वो भी योद्धे हैं और तुम भी योद्धा हो। परंतु तुम बच्चों को शास्त्रार्थ नहीं करना है, उन झूठे शास्त्रों का अर्थ सुना करके बताने की बात नहीं है। भक्ति के शास्त्र, उनसे सबने दुर्गति को पाया है, उनका अर्थ तुमको थोड़ा ही करना है। तुम तो जाकर के बाप और रचना का परिचय देंगे, मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता एक कौन है वो समझाना है, और उसे एक मुक्ति दाता जीवन मुक्ति दाता की महिमा करनी है। ये कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, मन मना व्यवहार का अर्थ भी ये नहीं है कि गंगा में जाकर स्नान करो, मन मना भव का अर्थ ही है जो मेरे मन के अंदर संकल्प विकल्प है, जो मेरे अंदर ज्ञान की सरणी है, उस ज्ञान गंगा में तुम स्नान करते रहो, वो ही संकल्प विकल्प तुम्हारे अंदर चलने चाहिए, आलोड़न करना चाहिए। तो माम एकम याद करो, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अगर कोई और के संकल्प विकल्पों में रमण करेंगे तो पाप बढ़ते जाएंगे। ये अनेक मत देने वाला रावण, बहुत सिरों वाला, जब से इस दुनिया में आया है तो बच्चों को मालूम पड़ा कि रावण राज्य में हम कितना छी बन गए। 26 जनवरी और सत्य वाणी का तीसरा पेज, आस्ते आस्ते नीचे उतरते आए हैं। ये दुनिया है ही विषय सागर, अभी बाप इस विख के सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। विषय सागर में क्या होता है? विषय सागर में कीड़े मकोड़े जानवर एक दूसरे को काटते रहते हैं, और क्षीर माना खीर, खीर खंड में क्या होता है? चावल, चीनी, दूध तीनों मिक्स होकर के एक हो जाते। तो ऐसे क्षीर सागर में ले जाते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई मारामारी नहीं होती, बच्चों को यहां क्षीर सागर में बहुत मीठा लगता है। फिर भूल जाने से देखो क्या अवस्था हो जाती है, बाप कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। इस ज्ञान अमृत का ही गायन है क्या? इस ज्ञान अमृत का, जिस समय ये वाणी चल रही थी ब्रह्मा के मुख से, उस समय ज्ञानामृत कहें क्या? क्यों नहीं कहें? अमृत तो मंथन करके निकाला जाता है, उस समय जो कुछ भी सुनाया सुनने वालों ने सुना और सुनाने वाले ने सुनाया, परंतु मंथन तो नहीं हुआ। इसलिए ज्ञान सागर मंथन से ही अनेक प्रकार के रतन निकले हैं। ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना है। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से वो नशा गुम हो जाता है। बाबा खुद फील करते हैं, यहाँ फीलिंग बच्चों को आती है। हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा के मत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम बड़े वारियर से हैं कि सभी बातें बुद्धि में नॉलेज धारण करने की है, जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो। जानते हो कि पढ़ाने वाला कौन है, वेद का बाप एकदम हमको बदल देते हैं, तो बच्चों के दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। ये भी दिल में आना चाहिए उमंग कि जो खुशी हमको मिली है वो दूसरों को कैसे देवे। रावण का मिलता है शराब और बाप का मिलता है वर्षा। रावण के शराब से तुम कितना दुखी और अशांत बनते हो। बहुत गोप भी हैं जिनके दिल में होता है सर्विस करने का, परंतु कलश माताओं को मिलता है, क्योंकि शिव शक्तियां हैं ना। ये वंदे मातरम गाई हुई है, साथ में वंदे पितरम तो है ही, परंतु नाम माताओं का बाला करते हैं। कहते भी हैं पहले लक्ष्मी फिर नारायण, नारायण के द्वारा तो स्थापना नहीं होती है, किसको आगे करना पड़े, लक्ष्मी को आगे करना होता है, पहले सीता पीछे राम। यहां इस दुनिया में पहले मेल का नाम फिर फीमेल का नाम लिखते हैं। तो ये भी एक खेल है, बाप समझाते तो सभी कुछ रहते हैं। क्या तो रावण की दुनिया में पहले मेल को रख देते हैं, पीछे फीमेल को रखते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, है? दुनिया नीचे गिरती है या ऊपर उठती है? दुनिया नीचे गिरती जाती है, बाप आकर उल्टा कर देते हैं। पहले माताएं, बाद में पीछे पीछे पितरम, पहले वंदे मातरम। क्यों ऐसे क्यों होता है? मेल को आगे करने से नीचे गिरना क्यों हो जाता है, और फीमेल को आगे करने से ऊंचे चढ़ना कैसे हो जाता है? अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो ये भी खेल है, बाप तो सभी बातें समझाते रहते हैं। भक्ति मार्ग का राज भी समझाते हैं। देखो भक्ति में क्या क्या होता रहता है, जब तक ज्ञान नहीं है तो पता थोड़े ही पड़ सकता है। अभी तुम समझते हो, पहले हम तो जैसे अनपढ़े जट थे, गंध में पड़े हुए थे, बुद्धि गंध में ही धसी रहती थी। अभी तो हम गंध से निकल आए हैं, ज्ञान रत्न से खेलते हो, अभी सब के करैक्टर से सुधरते जाते हैं, तुम्हारा दैवी करैक्टर बन रहा है। पांच विकारों से आसुरी करेक्टर्स बन जाते हैं। अभी देखो कितनी चेंज होती है। तो चेंज हो रही है, उस चेंज होने वाली दुनिया में आना चाहिए ना। क्या चेंज होने वाली दुनिया में आना चाहिए? क्या मतलब हुआ? बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज हुई तो कहां जाना चाहिए? बेसिक नॉलेज में ही रहना चाहिए या क्लास ट्रांसफर करना चाहिए? क्लास ट्रांसफर करना चाहिए। फिर एडवांस नॉलेज में भी ग्रुप दिखाई दिए और ये भी बता दिया एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। और वो छोटे छोटे सहयोगी जो बाप के बनेंगे वो इतना पावरफुल संगठन होगा कि सारी दुनिया में तहलका मचाई देगा। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। तब पता चलेगा ये जो झूठे टाइटल रखवाने वाले हैं श्री श्री 108 जगतगुरु शंकराचार्य ये जगत के गुरु हैं या परमपिता परमात्मा 108 श्रेष्ठ आत्माओं को संसार में प्रत्यक्ष करने वाला वो जगत का गुरु है। तो दुनिया चेंज हो रही है तो चेंज में आना चाहिए। शरीर छूट जाए फिर थोड़े ही चेंज हो सकेंगे। बाप तो सर्वशक्तिवान है, कितना ताकतवर है, तो चेंज होती है, चेंज में लाते हैं। वो धर्म पिता है, धर्म आकर के स्थापन करते हैं, परंतु दुनिया चेंज होती है क्या? दुनिया ऊंची उठती है या और नीचे जाती है? दुनिया तो नीचे गिरती जाती है। बाप तो दुनिया को चेंज करने आया है। अनुभव में कोई कोई सुनाते भी हम बहुत कामी शराबी कबाबी थे, अभी इस ज्ञान में आने से हमारे में बहुत चेंज हुई है। अभी हम बहुत खुशी में रहते हैं, कोई कोई को प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु ये सभी बातें भूल जाते हैं। नहीं तो खुशी का पारा सदैव चढ़ा रहे, दिल में उमंग आए हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बिचारे बहुत दुखी है, उनको रास्ता बतावे। समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गालियां भी खानी पड़ती है। पहले से ही दुनिया में आवाज है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनाते हैं। अरे मंदिर में जाते हो, भगवान के सामने प्रार्थना करते हो ना? क्या प्रार्थना करते हो? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो भाई बहन हुए ना। जरूर कभी प्रैक्टिकल में भगवान आया है और उसके मंदिर में जाकर के ये अंजाम किया है। बाप के बच्चे बने हैं प्रैक्टिकल में, आत्मा आत्मा भाई भाई और भाई बहन प्रैक्टिकल में बने हैं, तब दुनिया चेंज हुई थी। नहीं तो दुनिया में शांति नहीं हो सकती। अनेक धर्म हो, अनेक राज्य हो, तो शांति कैसे होगी? तो भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्मा भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो देवभान की पक्की हुई पड़ी है वो टूटती नहीं है। क्यों नहीं टूटती है? जन्म जन्मांतर तो लौकिक बाप था, हरेक को अपना अपना अलग अलग बाप था। अब इस जन्म में तो हमको बेहद का बाप मिला है, तो बुद्धि में बात बैठ जानी चाहिए कि हम सब बेहद बाप के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है। फिर ब्रह्मा की औलाद बनने से भाई बहन बनते हैं। तो पूर्व जन्मों की देह भान की दृष्टि टूट जानी चाहिए, नहीं तो बाप कहेंगे ये बाप का सच्चा बच्चा नहीं बने है। बाबा के पास बहुत पत्र आते हैं, लिखती हैं, बाबा हमारे ऊपर बाप की कुदृष्टि रहती है, ससुर की कुदृष्टि रहती है, अभी हम इनसे कैसे छूटें? बहुत दुख होता है, बाबा बचाओ, हमको भाई खराब करते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा पति के लिए, यहां तो भाई बाप मामा चाचा काका सभी दुशासन बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया जब कलयुग के अंत में तमो प्रधान होती है तो सारी दुनिया में ये हाल हो जाता है। कल्प कल्प हम यही बातें सुनते हैं। तो बाप समझाते हैं इसे सूची दुनिया से तुम बच्चों को पार जाना है, गुलगुल बनना है। कितने ज्ञान सुन करके फिर भूल जाते हैं, विकारों में गिरते हैं तो सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना, कोई की काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं। कोई कोई तो ऐसी बहादुर हैं जो खुद जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करती हैं, हमको ये ऐसे ऐसे नंगन करते हैं, मारते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, परंतु इन बातों में बड़ी महावीरनी चाहिए। कुछ सटका भी खाना पड़ता है। 21 जन्म सुख पाने के लिए एक जन्म सटका खाया तो कोई हर्जा थोड़े ही है। जो रीढ़ बकरियां होती हैं वो तो बेचारी मार खाती ही रहती है। कोई कोई शेरनी निकलती है, कोई तो फिर छींची ही होती रहती, ताकत ही नहीं ऐसी, फिर बाहर निकल न सके। बाबा तो इन बातों को बहुत अनुभवी है। हिस्ट्री में देखो इस विकार के पीछे राजाओं ने अपनी राजाई गंवाई है। ये काम महाशत्रु बहुत खराब है। सभी कहते हैं बाबा ये बहुत कड़ा दुश्मन है। बाप कहते हैं इस काम को जीतने से ही तुम विश्व के मालिक बनोगे। बड़ी भारी लड़ाई है, परंतु डरना नहीं चाहिए। काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके फिर भी गिर पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया में करैक्टर से बिगड़े हुए हैं। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, ये किसी को पता नहीं है। इन्हें लक्ष्मी नारायण ने ये राजभाग कैसे पाया, जो शास्त्रों में इनकी कोई ग्लानी नहीं है, सब देवताओं की ग्लानी है, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानी नहीं करता। ऐसा राज्य इन्होंने कैसे चलाया, ये राज्य कैसे पाया, कब, कोई बता नहीं सकता। आगे चल करके ऐसा समय आएगा जो तुम बच्चे विलायत आदि में भी जावेंगे। वो बुलायती लोग भी तुमसे सुनेंगे, बुलावेंगे, पूछेंगे बताओ ये पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। प्रैक्टिकल में पैराडाइज की आवाज सुनेंगे तब तो पूछेंगे, सुनेंगे ही नहीं तो पूछेंगे कैसे, जानेंगे तो पूछेंगे, उनको बताना पड़े ये पैराडाइज कब था। कोई को तो पता है नहीं, आगे तुम भी नहीं समझते थे कि ये दुनिया स्वर्ग थी, तुम भी क्या समझते थे कि स्वर्ग कोई ऊपर होता है, नरक कोई पाताल में होता है, परंतु ऐसे तो है नहीं। इसी दुनिया में स्वर्ग और बाद में इसी दुनिया में नरक बन जाते हैं। अभी तुमको कितना मालूम पड़ गया, तुम्हारी बुद्धि में ये सारी बातें बैठ गई हैं, अच्छी रीत बैठी है। 26 जनवरी 68 की वाणी का चौथा पेज, तो अभी तुम्हारी यही लात और तात रहनी चाहिए और सभी बातें भूल जानी है। बाप दादा तो बैठे हैं, कोई भी बात में नाराज नहीं होना चाहिए, है? नाराज कब होते हैं, कोई दुख देता है, तकलीफ देता है, अन्याय की बात करता है तो नाराजगी आती है ना, तो नाराजगी आनी चाहिए। जबकि हमें मालूम है कि धर्मराज बाप आया हुआ है, एक एक का 12 न्यारा 100 गुना वसूल करेगा। कोई बात होती है तो लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, आपस में बाप के पास बात पहुंचनी चाहिए। बाप सभी दुख दूर करने वाला बैठा है ना, बैठा है, इससे क्या साबित हुआ? नहीं, बैठा है का मतलब सभी दुख दूर करने का अंजाम है। बाप आए हैं तो तब ही जावेंगे जब तुम बच्चों के सब दुख दूर हो जावेंगे, तब तक बाप को वापस नहीं जाना है। तुम्हारे तो सदैव सदैव के लिए, अर्थात 21 जन्मों के लिए सभी दुख दूर हो जाते हैं। तुम जानते हो हम ट्रांसफर हो रहे हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। हम दुखधाम से सुखधाम जा रहे हैं, इस बात की तुमको बहुत खुशी रहती है क्या कि पुरानी दुनिया के संगठन को छोड़कर हम नए ब्राह्मणों के संगठन में जा रहे हैं, संपूर्ण ब्राह्मण ही संपूर्ण देवता बनेंगे। लाटरी तुमको बहुत फर्स्ट क्लास मिलती है, तो तुमको अपनी संभाल आपे ही करनी है। कहीं ऐसा न हो हम संग दोष में और अन्न दोष में फंस जावे। फंस जावेंगे तो क्या होगा, बुद्धि खराब हो जावेगी। बुद्धि खराब होगी तो नई दुनिया के संगठन में जाए नहीं सकेंगे। अपना सुधार करना है। तुम्हारी है ही योग बल की बात, भोग बल की तो बाहुबल की तो बात ही नहीं। बाप ही आकर के तुमको योग बल सिखाते हैं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। वो लोग आपस में कितना लड़ते रहते हैं, क्यों? क्योंकि एक बाप को जानते नहीं है और तुम तो एक बाप को जान गए हो, जो आकर के एक धर्म एक राज्य एक भाषा की दुनिया की स्थापना करते हैं। वो लोग आपस में एक दूसरे को ताकत दिखाते रहते हैं, एक दूसरे पर क्रोध करते हैं तो ताकत दिखाते हैं, कोई बम्ब की ताकत दिखाते हैं। अमेरिका ताकत दिखाता है ना, समझते हैं कि हम ही जीतेंगे, इनके पास तो कोई बाहुबल की ताकत नहीं है। अभी सभी आपस में लड़ेंगे जरूर। कौन लड़ेंगे?
सब धर्म वाले।
जो बाप को नहीं जानते हैं वो आपस में लड़ेंगे, और जिनको बाप की पहचान है वो तो समझेंगे सब कुछ बारा न्यारा होने वाला है, हमें शांत होकर के रहना है, साक्षी होकर के देखना है। तुम तो जानते हो जीत हमारी होनी है। दिन प्रतिदिन देहभान का जोर होता जाता है, समझते भी हैं कि बस अभी लड़ाई लगी की लगी। उनके अंदर में होगा मैं जीतूंगा, मैं पावरफुल हूं। एक क्रिश्चियंस ही आपस में लड़ते हैं, उनमें बहुत ताकत है। क्या, कौन सी दुनिया की बात हो रही है? ब्राह्मणों की दुनिया की ही बात हो रही है, सिर्फ बेसिक वालों की बात नहीं हो रही है, एडवांस वालों की भी बात हो रही है। एडवांस में भी कौन लड़ेंगे आपस में? जो क्रिश्चियन धर्म के होंगे वो आपस में लड़ेंगे। उन क्रिश्चियन आदि के पास बहुत बॉम्ब्स हैं, उनका धंधा ही है ग्लानी के बॉम्ब्स इकट्ठे करना, व्यक्तिगत एक एक की लूपोल को पकड़ना। इस पर वो बहुत खर्चा करते हैं, उनों के पास तो ये ढेर के ढेर बॉम्ब्स हैं। शास्त्रों में कहानियां भी बनी हुई हैं। दो बंदर आपस में लड़े और मक्खन बीच में तीस रखा गया। ओम शांति।
तो अपना शरीर छोड़ देता है तभी उसका सच्चाई पता पड़ता है, ये हम गलत किया नहीं तो ये अच्छा किया। फिर वो आत्मा किसी में प्रवेश करके हम जो गलत किया वो गलत को वो मिटाएगा नहीं मिटाएगा, मतलब वो सही तरीके से चलाएगा नहीं चलाएगा।
कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं, 63 जन्म की बात कर रहे हैं या संगम युग की बात कर रहे हैं?
संगम युग की होता है तो जगदीश भाई की बात छोड़ बोलिए। वो शरीर छोड़ दिया, वो शरीर छोड़ने के बाद हमने बाप को पहचाना नहीं है, बाप को प्रत्यक्ष करना है, प्रत्यक्ष नहीं कर पाया, फिर वो किसी में प्रवेश करके प्रत्यक्ष करने के वो लगेगा नहीं लगेगा?
वो प्रवेश भी करेगा तो अपने ग्रुप वालों में ही प्रवेश करेगा या कोई में भी प्रवेश कर सकती है आत्मा?
अपने ग्रुप वाले से सपोर्ट करेगा।
जो भी भूत प्रेत बनते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, वो सब में प्रवेश कर सकते हैं या कोई उनका ग्रुप विशेष है जिसमें ही प्रवेश कर सकते हैं?
जो जिसका सपोर्ट करता है उसी में प्रवेश कर,
उसी में प्रवेश कर सकते हैं। तो जो जिस ग्रुप की आत्मा होगी वो वहीं जाकर के प्रवेश करेगी।
फिर प्रत्यक्ष करेगा नहीं करेगा?
जब उनका नंबर आवेगा तो प्रत्यक्ष करेंगे।
उसको हमने ये गलत किया, वो ये महसूस भी किया?
महसूस नहीं हो रहा है तभी तो, महसूस अगर नहीं हो रहा हो तो संदेशी में आके वो आत्मा क्यों बोल रही है कि मैं जो करना चाहता था वो कर नहीं सका?
कौन सा करना चाहते रहते हैं वो कौन सा नहीं कर पाया?
बाप को प्रत्यक्ष करना चाहते थे, नहीं कर पाया।
ये बोलना चाहिए ना बाप कहाँ है, बाप कहाँ है, कौन सा पार्टधारी है, वो तो उनको जानकारी है, सूक्ष्म शरीरधारी है इसलिए उनको जानकारी है, वो तो कुछ ना कुछ
वो भी नंबर बार जानकारी बनेगी। जब प्रवेश करते करते एडवांस की आत्माओं में प्रवेश करते करते उनको जानकारी मिलेगी तभी तो जानेंगे, एकदम जानेंगे। और
एडवांस में जो बात होता है, एडवांस में होते ही भी बाप को जो वितरित करने वाला भी होता है, एडवांस में रहते तो भी जो जो बाप की जो पार्ट होता है उसको उसको मुकाबला करने वाला भी होता है। ये बाप का पार्ट होते तो उसका बात मानते हैं, तब तक चलते रहते हैं, बाद में ये बाप नहीं है, एक क्या है बोल देता है।
मतलब कोई के प्रभाव में आ गया, अगर कोई के प्रभाव में आ गया माना प्रजा बन गया, प्रजा बन गया माना बच्चा बन गया, तो जिसका बच्चा बन गया वो उसकी बात करेगा। जब कोई नए बाप के घर में जन्म ले लेता है तो पुराने बाप को भूल जाता है ना, तो ऐसे यहाँ भी है। अनिश्चय बुद्धि बना माना कहीं निश्चय बुद्धि और बैठ गई, कहीं दूसरी जगह निश्चय बुद्धि बन गया, तो जिसकी बात पर निश्चय हो गया वही उसका बाप हो गया।
ब्रह्मा में
ऐसे ही होगा, संकल्पों से सृष्टि रची जा रही है। हाँ,
कुछ लोग टेलीविजन आदि देखते रहता है, पृथ्वीराज चौहान है, कुछ अच्छा अच्छा सीरियल खेलते रहता है, हाँ वो सीरियल देखते देखते उसको महसूस भी होता है, जस्ट ऐसा अपू जैसा महसूस होता है ये पार्ट हमारा जैसा लग रहे हैं, ये पार्ट हमने बजाया हो सकता है, ऐसा महसूस होता है यहाँ। फिर ड्रामा में भी होता है क्या, यहाँ महसूस होता है उसको ये पार्ट हमारा जैसा लग रहा है?
नारायण एक बनता है लेकिन नारायण जैसे और भी बनते हैं या नहीं बनते हैं, तो उनको वो महसूस नहीं हो सकता, लेकिन एवर लास्टिंग अंत तक ये महसूस होता रहे तब बात है। और ऐसे नहीं नशा चढ़ गया, थोड़े समय के लिए विष्णु बन के बैठ गए, विष्णु हमारा ही पार्ट है, फिर बाद में चला पता चला अरे हम तो मुगालते में थे। तो पृथ्वीराज सीरियल आदि ये जो सीरियल चले हैं ये तामसी दुनिया वालों ने बनाए हैं या सात्विक स्टेज में बने हैं? और पृथ्वीराज का इतिहास में जो सबाका हुआ है वो कौन से युग की बात है? कलयुग की बात है। कलयुग में जो आत्मा पार्ट बजाएगी वो तामसी पार्ट बजाएगी या सात्विक पार्ट बजाएगी?
पार्ट
काम है मैंने साथी है कोई बात है, परंतु शेर शेर है नहीं, उसका मुकाबला मुकाबला करता है जो सांप होता है, छोटा सांप है बड़ा सांप है उसका उसका ये जरूर करेगा। मतलब वो तो पावरफुल है ना।
एक है संगम युग में शेर का पार्ट और एक है द्वापर में शेर का पार्ट और एक है कलयुग में शेर का पार्ट। हम कौन से रूप को अपना एम ऑब्जेक्ट बना करके चले उसमें ज्यादा फायदा है?
जो
उंच तो उंच तो संगम युग का ही होगा ना। तो कलयुगी दुनिया के जो हीरो पार्टधारी है उनमें हमें बुद्धि अपनी क्यों ले जानी चाहिए कि हमारा ये पार्ट है? एक ही ऊंचते ऊंच पार्ट पकड़ ले। हर आत्मा आप 84 जन्मों में एक जन्म में सबसे ऊंचा पार्ट बजाती है और बाकी जन्म में नंबर वार पार्ट बजाती है। तो अगर हर आत्मा का अपना एक जन्म जो ऊंच से ऊंचे है, जो परमपिता परमात्मा हमें आकर के बताते हैं, उस पर अगर एम ऑब्जेक्ट बना रहे तो बाकी तो अपने आप हो जाएगा। पृथ्वीराज सीरियल देखा, उसमें नमक मिर्च मसाला कितना मिला हुआ है। जैसे कि एक उपन्यास हो गया, जैसे कि एक फिल्म हो गई, वो तो पैसे कमाने के लिए बनाया है या विश्व के कल्याण के लिए बनाया है? उनका लक्ष्य क्या है बनाने वालों का? पैसा कमाने के लिए। ऐसी जगह छोड़ते हैं सीरियल को जहां उत्सुकता बनी रहे आगे क्या होगा। तो ऐसी रचना में हम अपनी बुद्धि अगर लगाएंगे तो पतन होगा या उत्थान होगा?
पतन
होगा। सात्विक समय के बने हुए शास्त्र कौन से हैं, किताबें कौन सी हैं जो द्वापर के आदि में बनाई गई थी? जैसे गीता है, महाभारत है, वाल्मीकि रामायण है, भागवत है, शिव पुराण है, इनमें अगर मनन चिंतन मंथन करेंगे और ज्ञान की बातों से टैली करेंगे तो बुद्धि ज्यादा सात्विक स्टेज में रहेगी या ये आज के सीरियल में बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि सात्विक स्टेज में रहेगी?
बुद्धि सीरियल चल रहा है।
हाँ
देव ओम नमः शिवाय। हाँ सब कहता है।
हाँ नहीं, बीच बीच में वो तो अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं, उसको अलग करो। हाँ किसमें? शिव महापुराण में, ओम नमः शिवाय में एडवर्टाइजमेंट की बात यहाँ नहीं थोड़ी ही हो रही है।
टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट हो रहा है,
बंद कर दो। घड़ी तो सामने रखी है ना। अच्छे धार्मिक सीरियल देखने में और जो आज के सीरियल देखने में उसमें अंतर नहीं होगा?
बहुत अंतर है।
और विशाखापट्टनम में कोई
ओम शांति।